أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد ہمارے اس کار کرم کے سبھی درشکوں کی خدمت میں میں اپنا پیار بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنے آج کے کاریہ کرم میں جو روزے سے سمبندھت ہے اس میں اس بارے میں آپ کے سامنے بات چیت پیش کریں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر ایک روزے دار روزے کی استھتی میں ان کو انجام دے دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس سے سمبندھت جو مسئلے ہیں ان کے بارے میں ہمارا پریتن ہوگا کہ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ایک روزے دار کو روزے کی استھتی میں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ ان کو کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی انسان روزے سے ہے تو وہ کچھ کھا اور پی نہیں سکتا ہے، اگر کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر وہ خدا، پیغمبر، معصومین ان سب کے اوپر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، جھوٹ مڑتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا ہس میتھن کرتا ہے، سمبھوگ کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو توڑ دیتی ہیں اور ایک انسان روزے کی استھتی میں ان کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ وسترت روپ سے بات چیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے روزے کو توڑ دیتی ہے اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ مسئلے پیش آتے ہیں وہ ہے کھانا اور پینا۔ اگر کوئی انسان روزے کی استھتی میں کچھ کھاتا اور کچھ پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سارے فقہا یہی کہتے ہیں، چاہے وہ کھانے والی چیز کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑی سی کھائے یا ادھک کھائے، فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں کوئی انتر نہیں کہ کھانے والی چیز کم ہے یا زیادہ ہے، اگر اس نے کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور بات وہ یہ کہ جو کھانے والی چیز ہے چاہے وہ سامانیہ روپ سے کھائی جاتی ہو یا نہ کھائی جاتی ہو، جیسے سامان روپ سے کھائی جانے والی چیز جیسے روٹی، چاول، دال، اس پرکار کی چیزیں جو سامانیہ روپ سے کھائی جاتی ہیں، اگر روزے دار ان میں سے کوئی چیز کو کھاتا ہے تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جو سامانیہ روپ سے نہیں کھائی جاتی ہے، جیسے مٹی، دھول، اس پرکار کی چیزیں جو سامانیہ روپ سے نہیں کھائی جاتی ہیں، تو اگر انسان مٹی یا دھول یا اس پرکار کی چیزیں بھی کھا لیتا ہے تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کم کھائی جائے یا ادھک کھائی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی انتر نہیں ہو، اس کا روزہ ترنت ہی ٹوٹ جائے گا، جیسے ہی وہ کھائے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک جو مسئلہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو انسان کھا رہا ہے، یعنی جس چیز کو سے اس نے حلق سے نیچے اتارا ہے، اب مان لیجئے ہم نے سحری کی، کچھ کھایا اور پیا، اس کے بعد ہمارے دانتوں کے بیچ میں کچھ چیزیں رہ گئیں، کچھ کھانا رہ گیا، اس پرکار کی چیزیں اگر رہ جاتی ہیں، اگر انسان جان بوجھ کے دانتوں کے بیچ میں رہ جانے والے کھانے کو اپنی حلق سے نیچے اتار دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا کڑھ ہی کیوں نہ ہو کھانے کا، اگر وہ دانتوں کے بیچ میں رہ جانے والے کھانے کو حلق سے نیچے اتار دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، اس کو دوبارہ اس روزے کی قضا کرنی ہوگی اور کچھ شرطوں کے شاید کفارہ بھی اس کو دینا ہو۔ اس کے بعد یہ وہ چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ کھانے والی چیز جو کھا رہا ہے انسان، سامان ہو یا اسامان ہو، یعنی معمولی طور سے نہ کھائی جاتی ہوں، یہاں پر حیات اللہ سیستانی ایک بہت آگے کی بات کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں اسامان چیزوں میں جو ہم معمولاً نہیں کھائی جاتی ہیں اس کو اگر کھا لے، وہ کہتے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسواک کر رہا ہے، دانت صاف کر رہا ہے، وہ برش سے یا مسواک سے، اس سے کوئی انتر نہیں ہے، اگر وہ کر رہا ہے اور کرنے کے بعد اس برش کو، اس مسواک کو منہ سے باہر نکالتا ہے اور باہر نکالنے کے بعد دوبارہ وہ اپنے منہ کے اندر رکھتا ہے اور اس ब्रश और मिसवाक की तरी को निगल लेता है तो इससे भी उसका रोज़ा टूट जाएगा, मगर ये कि वो मिसवाक और उस ब्रश की तरी मुंह के थूक में इतनी अधिक मिल जाए कि उसको ये ना कहा जाए कि ये ब्रश की तरी है और ये थूक है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर वो तरी को भी पी रहा है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। उसके बाद इसी में से खाने और पीने वाले मसलों में से कुछ मसले में से ये मसला हो सकता है कि अगर ये सहरी के टाइम पेश आ सकता है कि अगर कोई इंसान सहरी कर रहा है और सहरी करते समय जिस समय उसके मुंह में निवाला था उस समय उसको ये पता चला कि सुबह हो चुकी है, यानी अज़ान का समय हो चुका है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली, यहाँ पर जो कहा जा रहा है अज़ान का समय हो जाना, यहाँ पर मापदंड अज़ान का समय होना है, मापदंड अज़ान होना नहीं है, क्योंकि बहुत संभव है कि किसी स्थान पर अज़ान समय से थोड़ी लेट हो, तो जिस समय अज़ान का समय हो जाता है उसी समय से रोज़े का समय आरंभ होता है, अज़ान मापदंड नहीं है। तो हम अपने मसले की तरफ पलटते हैं कि अगर इंसान सहरी करते समय मुंह के अंदर निवाला था उस समय उसको ये पता चलता है कि उसका रोज़े का समय आरंभ हो चुका है, यानी सुबह हो चुकी है, तो अब उसके ऊपर वाजिब ये है कि जो निवाला उसके मुंह के अंदर रखा हुआ था उसको तुरंत बाहर निकाल दे, और अगर वो नहीं निकालता है और जानबूझकर निगल जाता है तो उसका उस दिन का रोज़ा बातिल है, और कुछ शर्तों के साथ जिसको हम आगे बताएंगे उसके ऊपर उस दिन के रोज़े के साथ साथ उसका कफ़ारा भी वाजिब होगा। तो हमने आपके सामने बताया कि अगर इंसान खाता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन इसमें शर्त यह है कि खाने वाली चीज़ कम हो या ज़्यादा उससे बेहतर नहीं, लेकिन शर्त यह है कि जिस समय इंसान खा रहा हो जानबूझ के खा रहा हो, उसको पता हो कि मैं रोज़े से, वो फिर खाए। अगर जानबूझ के और जो है इस प्रकार खाता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन अगर खाने वाला भूल जाए, उसको याद ना रहे कि वो रोज़े से है, तो अगर वो भूले से कोई चीज़ खाता है तो ये भूले से खाना उसके रोज़े को नहीं तोड़ेगा, उसका रोज़ा सही रहेगा। उसके बाद जो मसला पेश आता है वो ये है कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो क्या वो अपनी कमज़ोरी के कारण अपने रोज़े को तोड़ सकता है। यहाँ पर ये प्रश्न है कि इंसान ने रोज़ा रखा, दिन में कोई एक ऐसा समय आया कि उसके ऊपर बहुत अधिक कमज़ोरी आ गई, तो क्या ये कमज़ोरी इस बात का कारण बनेगी कि वो अपने रोज़े को तोड़ दे, कुछ खा पी ले। तो हमारे फुकहा कहते हैं नहीं, कमज़ोरी रोज़ा तोड़ने का कारण नहीं है, हाँ लेकिन अगर कमज़ोरी इतनी अधिक हो जाए कि उस कमज़ोरी को सामान्य रूप से बर्दाश्त करना कठिन हो, बहुत सख्त हो, तो वो रोज़े को तोड़ सकता है, यानी अगर कठिनाई की हद तक उसकी कमज़ोरी पहुंच जाती है तो रोज़ा तोड़ सकता है, उसके अतिरिक्त कमज़ोरी रोज़ा तोड़ने का कारण नहीं बनेगी। उसके बाद खाने पीने में जो चीज़ है, या असामान्य चीज़ें जिसमें हमने कही, उसमें से एक मसला ये भी पेश आता है कि कभी कभी बलगम वगैरह हमारे मुंह में आ जाता है, बलगम सीने से ऊपर आ जाता है, तो इसके बारे में क्या है कि क्या बलगम को निगल सकता है या नहीं निगल सकता है, क्या करें। तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर बलगम जैसी चीज़ें सीने से निकल कर मुँह तक न पहुँचें तो उनको निगलने में कोई हर्ज नहीं, उससे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन अगर सीने से निकल के मुँह की हद तक पहुँच जाए तो इंसान उस बलगम को नहीं निगल सकता है, एहतियात वाजिब ये है कि उस बलगम को थूक दे, उसको ना निगले। ये बलगम से संबंधित चीज़ भी। अब यहीं पर थूक से संबंधित, हमारे फुकहा कहते हैं कि थूक निगलने से इंसान का रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे थूक कितना ही अधिक क्यों ना हो, और बहुत संभव है कि अगर ये थूक किसी खट्टी चीज़ के सोचने से, चाट वगैरह की चीज़ को देखने से, इस प्रकार की चीज़ों से भी वो थूक ज़बान के अंदर, मुँह के अंदर पैदा हो रहा है, तो उसको भी निगलने से रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा बातिल नहीं होगा, यानी थूक कितनी भी मात्रा में हो उसका निगलना रोज़े के बातिल होने का कारण नहीं बनेगा, इंसान का रोज़ा निगलने के बाद भी सही रहेगा। तो ये वो चीज़ें थीं जो कुछ खाने और पीने से संबंधित जो हमने आपके सामने बयान की। इसके बाद एक मसला जो अधिकतर लोगों के जहन में होता है और पूछा भी जाता है, और अगर हम तौज़ील मसाइल जैसी किताबों को देखें तो उसमें भी ये मसला मिलता है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि रोज़े की हालत में, रोज़े की स्थिति में इंजेक्शन का लगवाना कैसा है। तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर वो इंजेक्शन खाने के स्थान पर ना हो तो उस इंजेक्शन को लगवाने में कोई हर्ज नहीं है, वो इंजेक्शन रोज़े को नहीं तोड़ता है। भले ही इस इंजेक्शन के लगने के बाद इंसान के शरीर का कोई अंग कोई हिस्सा सुन्न हो जाए, अगर वो इंजेक्शन खाने के स्थान पर नहीं था तो उसके लगवाने से कोई हर्ज नहीं है, उसके लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन यहाँ पर एहतियात ये है कि वो इंजेक्शन जो खाने के स्थान पर लगाया जाता है उनको नहीं लगवाना चाहिए रोज़े की स्थिति में। ये तो एक आम मसला हुआ जो हमने आपके सामने बयान किया। इसके बाद इसी में हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनई की, खुदा इनको इन दोनों को तूले उम्र अता करे, दोनों के फ़र्ज़ में थोड़ी सी भिन्नता नज़र आती है हमको। आयतुल्लाह सिस्तानी यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का इंजेक्शन हो वो रोज़े को नहीं तोड़ता है, चाहे वो इंजेक्शन खाने के स्थान का हो, चाहे वो ताकत का इंजेक्शन हो, चाहे वो डायरेक्ट नस के अंदर लगाया जाए, चाहे नस के अंदर न लगाए, किसी भी प्रकार का इंजेक्शन हो, कैसे भी लगाया जाए, वो रोज़े के तोड़ने का कारण नहीं बनता है। लेकिन आयतुल्लाह खामनई यहाँ पर कहते हैं कि अगर इंजेक्शन खाने के स्थान पर का था और ताकत का इंजेक्शन था, या एक ऐसा इंजेक्शन था जो डायरेक्ट नस में लगाया जाता है, अगर इंजेक्शन ऐसा था तो एहतियात ये है कि इंसान को ऐसा इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई इंजेक्शन है तो रोज़ा उसके बातिल नहीं होगा। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने आपके सामने बयान किया, मसले थे खाने और पीने के संबंध में कि जो चीज़ें खाने और पीने से हमारे रोज़े को बातिल कर देती हैं। उसके बाद जो चीज़ हमारे रोज़े को बातिल कर देती है कि अगर हम तौज़ीन मसाइल को देखें तो उसमें जो दूसरी चीज़ हमको दिखाई देती है वो ये है कि अगर इंसान अपनी हलक के अंदर गाढ़ी धूल गाढ़ी मिट्टी या इस प्रकार की चीज़ों को अपने हलक के अंदर पहुंचा दे तो उससे रोज़ा टूट जाता है। यहाँ पर शर्त ये है कि जो चीज़ पहुंचाई जा रही, जो धूल पहुंचाई जा रही, जो मिट्टी पहुंचाई जा रही, जो गुबार पहुंचाया जा रहा है वो गाढ़ा हो। तो अब अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम अभी आपके सामने बताएंगे, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गुबार के हलक में पहुंच जाने के बावजूद रोज़ा नहीं टूटेगा। सबसे पहला स्थान क्यों नहीं टूटेगा कि जैसे कि हमने आपके सामने ऊपर बयान किया, अभी बयान किया आपको, कि अगर वो जो धूल जो मिट्टी जो गुबार है हलक के तरफ पहुँचा तो शर्त यह गाढ़ा हो। अगर गुबार गाढ़ा नहीं है, धूल गाढ़ी नहीं है, तो वो रोज़े को नहीं तोड़ेगी भले ही वो हलक के अंदर पहुँच जाए। दूसरी बात यह है कि हलक तक ना पहुँचे, भले ही गुबार गाढ़ा था, उठा गुबार, लेकिन हलक तक नहीं पहुँचा। अगर हलक तक नहीं पहुँचता है तो उससे रोज़ा हमारा बातिल नहीं होगा, रोज़ा सही रहेगा। उसके बाद यह है कि जानबूझकर नहीं पहुँचाया उसने, अचानक एकदम से गुबार आया और वो पहुँच गया और हलक के अंदर पहुँच जाता है अचानक बिना अख्तियार के, बिना कंट्रोल के अगर पहुँच रहा है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, रोज़ा सही रहेगा। उसके बाद जैसा कि हमने इससे पहले वाले में बताया, इंसान भूल जाए, उसको याद ही ना रहे कि वो रोज़ा था, तो उसके बाद वो हलक के अंदर गुबार पहुँच जाए तो उससे भी रोज़ा बातिल नहीं होगा क्योंकि वो भूले से पहुँचा था उसके। उसके बाद जैसा कि हमने आरंभ से बताते हुए आए कि अगर इंसान शक करे किसी चीज़ के बारे में तो क्या होगा, अगर शक करे कि हलक के अंदर गुबार पहुँचा या नहीं पहुँचा है, तो अगर शक कर रहा है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। यहाँ पर हम आपके सामने एक बात स्पष्ट कर दें कि जो गुबार उड़ के हलक के अंदर पहुँचा है, गाढ़ा है, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो गुबार किस प्रकार का हो, चाहे वो गुबार खाने वाली चीज़ का हो, जैसे आटे का गुबार एकदम से उठा, आटे की बोरी गिरी एकदम से उठा, गुबार हलक के अंदर पहुँच गया तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, चाहे वो बिना खाने वाली चीज़ को जैसे धूल मिट्टी हो, अगर इसका गुबार है गाढ़ा है तो ये भी रोज़े को बातिल कर देगा। इसके बाद इसी में जैसे हमने धूल मिट्टी की बात कही तो एक मसला आपके सामने बयान कर दें, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि अगर कोई इंसान किसी ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ है, मसलन मान लीजिए किसी धूल भरे मैदान में मिट्टी में ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है, अब अगर एकदम से आंधी आती है, एकदम से हवा आती है और गाढ़ा गुबार उड़ता है, तो अगर ये इंसान अपने आप को उस गुबार से उस धूल से बचा सकता था तो उसको चाहिए अपने आप को बचाए, अगर बचा सकने के बावजूद वो अपने आप को न बचाए और हलक के अंदर उसके गुबार पहुंच जाए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, यानी अपने आप को बचाना उसके लिए आवश्यक है, अगर नहीं बचा रहा है तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो ये वो चीज़ थी जो हमने आपके सामने अभी बयान की जो धूल मिट्टी और गुबार से संबंधित थी। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं जो हमारे रोज़े को बातिल करती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर खुदा रसूल और इमामों के ऊपर कोई झूठा बहतान बांधता है तो ये भी रोज़े को बातिल कर देगी, लेकिन इसके बारे में अपने अगले कार्यक्रम में इंशाल्लाह बातचीत करेंगे आपके सामने। अगले कार्यक्रम तक हम आप सभी को ईश्वर की पनाह में छोड़ते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।